कोई वेकेशन होती है उसकी? नहीं, वो सोता है तो स्लेव है, वो जागता है तो स्लेव है, वो उठता है तो स्लेव है, वो बैठता है तो स्लेव है, चाहे संडे है स्लेव है, जुमा है स्लेव है, न्यू ईयर है स्लेव है, एंड ऑफ ईयर है स्लेव है, शादी ब्याह का मौका है तो गुलाम है, फौतगी का मौका है तो तब गुलाम है, मस्जिद में दाखिल हुआ तो गुलाम है, मस्जिद से बाहर है तो गुलाम है, बाजार में गया तो भी गुलाम है, रमजान था तब गुलाम है, ईद आई तब भी अल्लाह का गुलाम है। समझ आ रही है बात के नहीं? तो आप गुलाम 24/7 राउंड द क्लॉक सारी जिंदगी में, ठीक है? पहली बात तो ये समझ लो, यू कैन नॉट से कि बस इस टाइम पे तो मैं अल्लाह की गुलाम हूँ और शादी का मौका आया तो मैं गुलाम नहीं हूँ, और खुशी का मौका आया तो अब क्यों मैं अल्लाह की बात सुनू। अच्छा, गुलाम क्या कहता है ये भी बात, अल्लाह की बात सुनने के ऊपर बात याद आई, गुलाम की क्या कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है कि नहीं ये मुझे काम कहे जाएंगे तो मैं करूंगी? हाँ ठीक है, नमाज का आपने कहा तो मैं नमाज पढ़ती हूँ, रोजे का कहा मैं रोजा रखती हूँ, जकात हज ये सब मैंने किए, लेकिन देखें जहाँ पे मेरे दुनिया के मामलात है वहां पे दीन का क्या काम? दुनिया भी तो आखिर हमने चलानी है। दीन मस्जिद में अल्लाह अल्लाह है, लेकिन बाजार में अल्लाह अल्लाह थोड़ी होता है, बाजार में अल्लाह का जिक्र क्या और उसके हुक्म क्या चलेंगे वहां पे थोड़ी, वो तो मैं नमाज तो पढ़ रही हूँ और मेरी रेस्ट ऑफ माय लाइफ जो मैं घर में गुजार रही हूँ या मैं बाहर जाती हूँ या मेरे खुशी कमी के मौके, उसमें अल्लाह के अहकाम का क्या काम, उसमें दीन का क्या काम, वो तो हमारी दुनिया है। स्लेव क्या ये कह सकता है कि आका का हुक्म मेरे घर में नहीं चलना, हाँ जब मैं आका के पास जाऊंगा तब चलेगा? गुलाम क्या ये कह सकता है कि हाँ जी आपने मुझे हायर किया था कि मैं आपके ये क्या नाम है इसका घर की सफाई करूं, लेकिन आपने मुझे इसके लिए हायर नहीं किया कि मैं आपके लॉन की केयर करूं, तो मैंने लॉन का तो नहीं काम करना और बाहर का सौदा सलफ लाने का तो नहीं काम करना, वो तो नहीं आपने मुझे कहा था? गुलाम क्या ये कह सकता है? ये नौकर कह सकता है, गुलाम नहीं कह सकता। नौकर कह सकता है यानी जी आपने मुझे ये कहा था, अब आपकी नौकरानियां काम वाली कहती हैं जी आपने हमें सफाई के लिए रखा है, अब हमने बर्तन नहीं धोने, हमने ये नहीं कर, लेकिन गुलाम नहीं कह सकता। ये आप गुलामों की हिस्ट्री में देखिएगा, गुलाम ये नहीं बात कह सकता। वो उसकी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन एज सच स्पेसिफिक है ही नहीं। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जो भी मास्टर हुक्म दे वो मानना, ये उसकी जॉब है, समझे? हर हुक्म वो कुछ बात को किसी बात को भी नहीं कह सकता कि नो नहीं, यहाँ पे नहीं, हर बात को उसने मानना। अच्छा फिर देखिए ना, दुनिया के जो गुलाम और आका का जब लफ्ज आता है, गुलामी का स्पेशली वर्ड आता है, तो हमारे लिए बड़ा नापसंदीदा सा होता है, इतना हम इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि गुलाम हम कहते हैं नहीं, गुलामी नहीं होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। और आपको पता है जो जो गुलाम होते हैं वो भी आजादी चाहते हैं, वो आजादी के लिए फाइट करते हैं। फिर इसी तरह गुलाम हमेशा देखा गया है कि अपने आका से नफरत करता है, नफरत। गुलाम अपने आका का कभी शुक्र गुजार नहीं होता, कभी उसकी तारीफ नहीं करता, उससे उल्टा उसकी शिकायतें ही करता है ना हमेशा, और कोई गुलाम नहीं बनना चाहता। लेकिन अल्लाह ताला कैसा रब है, कैसा मास्टर है, सुभान अल्लाह, ये कोई उससे आजादी नहीं चाहता। उसके जो बंदे हैं, जो उसके गुलाम है ना, आप ही अगर आप अल्लाह के सही गुलाम है तो उससे आजादी नहीं चाहते। वो अल्लाह की तारीफें बयान करते हैं, उसकी का शुक्र अदा करते हैं। देखिए बात शुरू ही किससे हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुलाम कैसा है जो अपने आका की तारीफें बयान करता है। तेर कोई गुलाम अपने आका को पसंद नहीं करता, दुनिया के जो आका होते हैं, मगर ये गुलाम कैसा है जो अपने आका से बहुत मोहब्बत करता है। कोई नहीं चाहता कि मैं गुलाम बनूं, वॉलंटियर नहीं करता कोई के लो मुझे गुलाम बना लो अपना, कोई नहीं ये कहता किसी बंदे के पास जाते थे। लेकिन ये गुलाम कैसा है जो कहता है इयाका नाबुदु, मैं तेरा सीढ़ी को डाउन करता हूँ। ये खुद चाहता है कि मैं इस रब का गुलाम बन जाऊं। सुभान अल्लाह, ऐसा भी कोई ताल्लुक हुआ आका और गुलाम का? और जब भी आका का लफ्ज आता है तो हमारे जहन में क्या आता है? जुल्म, तशद्दुद, टॉर्चर, ज्यादती, मार धाड़, ऐसी चीजें आती है ना, बहुत ही ज्यादा किसी के ऊपर, बहुत कोई जालिम जैसे कोई कोड़ा लेके खड़ा हो। लेकिन ये आपका कैसा है? सुभान अल्लाह, ये कैसा है? मैंने अभी आपको बताया, केयर टेकर, ये केयर करता है, मुरब्बी है। ये कैसा आका है जो मुनाइम है, नेमते देता है? ये कैसा आका है जो कय्यम है, अल कय्यम, नेमतों को फिर कायम भी रखता है, नेमतों को छीन नहीं लेता। एक नेमत भी वो हवा की नेमत छीन लेता तो क्या करते, हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते थे। तो नेमतों को छीन नहीं लेता, सस्टेन करता है उनको, सस्टेनर है, मेंटेनर है, उनको कायम रखता है। एक ऐसा आका है जो रहमान और रहीम है, जो रहम करता है। कौन सा आका ऐसा होगा? ये ऐसा आका है जो मालिक है। तुम दुनिया में किसी के कोई कोई मास्टर होता भी है तो कोई मालिक होता भी है, तो वो कैसा मालिक होता है? पार्शल होता है। आप मिसाल के तौर पे आप अपने घर के मालिक हैं, लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि आप अपनी घर में आपको उनसे पूछ के कोई चेंजिंग करनी पड़ती है टाउनशिप से, और उसके अंदर ये नहीं आप कर सकते कि अपनी दीवारें इतनी ऊंची खड़ी कर लें, या 7 मंजिला बना लें, या अपने घर को ऑफिस बना लें और उसको दुकानें आगे उसकी खड़ी कर लें। ये नहीं कर सकते ना, हालांकि आप उसके मालिक हैं। अरे नहीं, देखिए, इंसान के जब मिल्कियत होती तो पूरी नहीं होती कभी भी, लेकिन वो कैसा मालिक है जो टोटली मालिक है, पूरी तरह मालिक है, पूरी तरह इंचार्ज है, तो वो ऐसा है। और रब का माना होता है जो पैदा करे, और ऐसा जो उसको पाया तकमील तक पहुंचाए, जो जो उसकी तरबियत करे, जो परवरिश करे और कमाल तक पहुंचाए। यानी देखिए, पैदा भी करे, उसकी टेक केयर भी करे, और ये रब की सिफत, माँ की सिफत होती है, पालने वाली। हम तो सिर्फ एक लफ्ज मतलब लिख देते ना, पालने वाला, रब्बुल आलमीन, पालने वाला जहानों का। लेकिन पालने के पीछे देखें क्या क्या चीजें हैं। पालना ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, पालने में केयर भी चाहिए होती है, पालने में लव भी दिया जाता है, पालने के अंदर हिफाजत भी की जाती है। अच्छा, अगर हम सोचें, आप बकरे को भी पालते हैं, फिर उसके बाद आप उसको जिबा कर देते हैं ईदे कुर्बान पे, एक वो भी तो पालना होता है ना। लेकिन इस रब का पालना कैसा है, आगे ही बता दिया कि वो अर्रहमान और रहीम है, बड़ी शफकत के साथ पालता है, मोहब्बत के साथ, रहम के साथ, मेहरबानी के साथ पालता है। और सुभान अल्लाह, रब्बल आलमीन है ना, किस किस का मास्टर है बताएं आप? सिर्फ आपका नहीं, आलमीन का, जहानों का, सब जहानों का मालिक है। और जहानों में फिर कौन कौन आ गए? कुल मखलूक आ गई, जितनी आसमान के, आसमान पे और आसमान के नीचे जो जो है वो सब आलिम है। आसमान और जो कुछ अंदर है उसके, वो भी आलिम है। तो सारी मखलूक आलिम है, सारी मखलूक का। अब बाद में कहा जिन, इंसान और फरिश्ते सिर्फ इससे मुराद है। अगर ये भी लिया जाए तो हर नौ एक, यानी इंसान सारे का सारा एक जहान, उसमें हर तरह के इंसान आ जाते हैं, चाहे काला, गोरा, छोटा, बड़ा, पुराने जमाने का, आज के जमाने का, हर एक उसका वो मास्टर है। अच्छा, अगर इससे एक बात साइड पे आ गई, अगर वो सुभान अल्लाह, हम सारी अगर गुलाम है और हम सारे एक ही मास्टर के गुलाम हैं, तो फिर किसको किसी पे फखर करने की कोई बात रह जाती है? हाँ? कोई हम गोरे हैं तो हम ज्यादा आला हैं दूसरों से, और काले हैं वो कम हैं, या अरब जो हैं वो अपने पर गरूर करें कि हम अरब हैं और बाकी आजमी हैं, और या कोई पाकिस्तानी अपने ऊपर फखर करे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और बाकी कोई और मुल्क के हैं, या आप अपने पंजाबी होने पे या सिंधी होने पे या हैदराबादी होने पे या बिहारी होने पे या पठान होने पे या किसी पे भी आप फखर करते हैं, फखर रह जाते हैं? आप सारे तो गुलाम हैं, फखर किस बात का रह गया? तो इस आयत ने तो सबका फखर और गरूर भी तोड़ दिया। कुरान शुरू ही होता है तो सारे ही अपने आप को गुलाम मान लो, फिर गुलाम गुलाम की क्या मैं रह गई और क्या वो रह गई और क्या बड़ाई रह गई, तो तुम सारे इक्वल हो। हाँ, जिसको अल्लाह ताला फरमा दे कि तकवा की बुनियाद पे जो बुलंद है वो तो है ही, इज्जत वाला है ही वो, लेकिन उसके अलावा फिर मुझे बताएं कि क्या बुलंदी रह गई या क्या गुरूर और तकब्बुर रह गया किसी का। और अगर हम आलम सारे आलम लें तो हर नौ एक आलम, यानी चाहे वो सुभानअल्लाह आसमान के फरिश्ते हों या इंसान हो या जमादात हो नबातात हो प्लांट्स हो या जानवर हो फिश हो बर्ड्स हो, इनके आलम है ना, एक पूरा जहान है इनका। क्योंकि बर्ड्स हैं तो कितनी किस्म की है, फिश है तो कितनी किस्म की है, आज तक इंसान जान भी नहीं सके, उनके जहान है पूरे पूरे। तो इन सब का मास्टर कौन है? इन सब का सस्टेनर, इन सब का केयर करने वाला, इन सबको रिस्क देने वाला, नेमते देने वाला, इन सब का मालिक, इन सबको चलाने वाला, सब का कौन है? मैं हम तो सिर्फ अपनी जात अपनी हस्ती की तरफ देखते हैं ना, यहाँ पे आ गया आलमीन का, सब आलमों का, सब का ही वो रब, सब का ही रब। तो सोचिए ना कितनी बात में वुसत आ गई। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने 40,000 आलम पैदा किए और ये दुनिया मशरिक से मगरिब तक एक आलम है। तो कितने सारे आलम है उसके, अल्लाह के सिवा जो भी मखलूक है वो एक आलम है। इसीलिए तो जब कुरान पास में आता है ना सूरह शुरा में आयत 23-24 में काला फिरऔन वमा रब्बुल आलमीन, फिरौन ने पूछा था वो रब्बुल आलमीन कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था काला रब्बुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा। तो आलमीन की उन्होंने क्या डेफिनेशन बयान की थी, असमावात और अर्द और जो इनके दरमियान है। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो आसमानों का रब है, जो जमीन का रब है, जो इनके दरमियान चीजों का रब है, वो है रब्बुल आलमीन। तो रब्बुल आलमीन की तारीफ समझ आ गई ना, इसका मतलब तमाम आसमान एक आलम है, जमीने एक आलम है और इनके दरमियान की चीजें एक आलम है, ये सब को चलाता है वो, अल्लाहु अकबर, सब को चलाने वाला। इसलिए उसकी तारीफ है और उसकी उसकी सना तो है ही, उसकी उसका शुक्र भी है कि वो तमाम आलमों का रब है, सुभान अल्लाह। फिर वो क्या है, अर रहमान और अर रहीम है। अर रहमान और अर रहीम क्या दोनों किससे निकले हैं, रहमीन से, यानी रहमा से निकले। दोनों में क्या चीज एक कॉमन नजर आ रही है, रहमा। रहमा कहते हैं नरमी को, केयर को, मोहब्बत को। आपको पता है माँ के यूट्रस को रहम कहते हैं। अच्छा आप थोड़ा सा सोचिए माँ के यूट्रस के बारे में कैसा होता है, बच्चा उसमें कैसे होता है, रहम ने बच्चे को अपने अंदर ढांपा होता है ना, अपने अंदर एनक्लोज किया होता है, कि कोई तकलीफ बच्चे को नहीं पहुंचती, कोई परेशान हो माँ तो वो परेशानी बच्चे को नहीं पहुंचती, माँ को कोई और चोट लगे तो वो बच्चे को नहीं पहुंचती, बच्चा हर तरह से महफूज होता है, बच्चे को वहां पे हर जरूरत मिल रही होती क्योंकि वो रहम में है माँ के, है ना, उसको रिस्क भी पहुंच रहा है, उसको हर तरह की प्रोटेक्शन भी है, बेहतरीन टेम्परेचर भी है जो उसके मुआफिक है, उसको हिफाजत भी है वहां पे, कोई फिक्र फाका उसके लिए वहां पे नहीं है, ठीक है। اب رحم کو دیکھیں یہاں پہ, جب ہم اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں الرحمن, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی رحمت نے ہمیں چاروں طرف سے ڈھانپا ہوا ہے, کور کیا ہوا ہے ہمیں اپنی کیئر سے, اپنی محبت سے, اپنی حفاظت سے, اپنی نعمتوں سے. تو الرحمن میں کیا ہے, ایکسٹریم رحم کرنے والا, جو امیجنیشن سے بھی ہمارے بیونڈ, جو جس کا رحم ہے وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا, ایکسٹریم اس میں زیادہ چیز آتی ہے. یہ آپ کو میں دونوں میں فرق بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے, کیونکہ دونوں میں رحم ہے. تو ہم شفقت کرنے والا, محبت کرنے والا, مہربانی کرنے والا, رحم کرنے والا, اس طرح کے الفاظ لکھ لیتے ہیں, لیکن جب دونوں کا روٹ ایک ہی ہے تو پھر رحم ہی آ گیا نا دونوں میں. تو لیکن فرق پھر کیا ہوا, تو دیکھ لیں رحمان میں کیا آ گیا, ایکسٹریم, ایکسٹریم بہت زیادہ. کیونکہ رحمان کس وزن پہ, فعلان کے وزن پہ, الف نون یہ ایم میں بتا رہا ہے الف کھڑی الف اور نون, کہ یہ ایکسٹریم بہت زیادہ اس میں ایگزیجریشن ہے. اور یہ صفت اس کی اس وقت ہو رہی ہے, اس وقت ظہور پذیر ہے. جیسے کسی کے اندر کوئی صفت ہو سکتی ہے, ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ ہم کسی کو کہتے ہیں فلانا ہے نا وہ بہت غصیلا ہے, بہت غصے والا ہے, تو ضروری نہیں کہ اس وقت بھی وہ غصے میں ہی بیٹھا ہو. یا فلانا ہے نا وہ بڑا رحم والا ہے, تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت بھی کسی کے اوپر رحم ہی کر رہا ہوں, اس وقت بھی وہ رحم کا معاملہ ہی کر رہا ہو کسی کے ساتھ. تو اس کی ایک صفت ہے. اچھا, تو اس اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے نا وہ کس وقت کے لیے, اس وقت ہے, اس وقت ہو رہی ہے, وہ اس وقت اس کی صفت یعنی پریکٹیکلی ظہور میں آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کے نہیں, اپلائی ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں. اچھا, تو دوسری رحمان میں یہ کوالٹی آ گئی اس لفظ میں, ایک تو بہت ایکسیسو بہت زیادہ ایکسٹریم, دوسری اس وقت ہو رہی ہے, اپلائی ہو رہی ہے. اچھا, اور تیسری ایک اس کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہوتی, پرماننٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب یہ اب آپ کو پھر انشاءاللہ میں اس کا بتاؤں گی کہ رحیم کے ساتھ کیا فرق ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں الرحیم کا لفظ, الرحیم, الرحیم میں بھی رحم ہے, رحم کا ہی مادہ آ گیا, مگر الرحیم جب ہم کہتے ہیں نا تو اس میں کیا ہے, ہمیشہ 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 اس چیز کا ہوتے رہنا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دن دو دن کے لیے ہوا. اب مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ کسی کا باپ فوت ہو گیا, آپ نے کہا یہ یتیم بچہ ہے, آپ کو اس کے اوپر بڑا رحم آ گیا. اب آپ اس کو اٹھا کے گھر لے آئیں, آپ نے کہا یتیم بچہ ہے میں اس کی پرورش کروں گی, آپ گھر لے آئیں, دو چار دن تو آپ کا رحم کے جذبے بڑے جوش میں تھے, اس کے بعد آپ کا سارا رحم جاتا گیا, تھوڑے دن بعد آپ کو غصہ آیا, آپ نے کہا کہ کیوں اس مصیبت کو گھر لے آئی, کیوں میں نے یہ کر لیا فیصلہ. اب آپ کا رحم ہمیشہ کا تو نہیں ہوا نا, ہمیشہ ہی نہیں ہوئی اس کو, لیکن رحیم کے ورڈ میں نا پرماننٹ ہونا ہے. سبحان اللہ, میں نے آپ کو بتایا تھا رحمان میں پرماننٹ ہونا نہیں ہے, رحیم میں کیا ہے, پرماننٹ, ہمیشہ ہمیشہ. سبحان اللہ, تو اگر رحمان صرف آتا اور رحیم نہ آتا تو یہ ہمیشہ کا رہ جاتی ہے بات. تو دونوں لفظ کمپلیٹ کرتے ہیں نا بات کو, کہ وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ آج جذبات آئے تو کسی کے اوپر رحم کر دیا اور کل کو پھر اس کو سزا دے دی یا کسی اور کو سزا, نہیں, اس کا رحم اتنا ہی ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو ان دو الفاظ کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ اتنا زیادہ رحم ہے, ہم کبھی اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کا رحم کتنا زیادہ. لیکن اچھا, الرحیم میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ابھی اپلائی ہو رہا, ضروری نہیں ہے کہ ابھی اپلائی ہو رہا. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ, دونوں ورڈ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں نا. रहमान में परमानेंट नहीं होना था तो अर रहीम में परमानेंट होना, अर रहीम में इस वक्त अप्लाई नहीं हो रहा लेकिन अर रहमान में इस वक्त अप्लाई हो रहा। इसीलिए हजरत इब्ने अब्बास से पूछा गया कि अर रहमान और रहीम क्या है, तो फरमाया अल्लाह ताला अर रहमान इस दुनिया में है और अर रहीम वो आखरत में है, क्योंकि हमेशगी है ना अर रहीम में, हमेशगी है। इस दुनिया में रहमान और वहां पे अर रहीम है, तो दोनों रहम से ही निकले हुए मादे, एक ही मादे से निकले हुए अल्फाज है, लेकिन दोनों में एक में वुसत ज्यादा, एक्सटेंसिव होना ज्यादा है रहमान में, और रहीम में इंटेंसिटी ज्यादा है मुकम्मल। तो दोनों का फर्क आपको वाजे हो गया। तो उसकी रहमत सब पे है, यहाँ से दुनिया में भी देखें उसकी रहमत मुसलमानों पे भी है, काफरों पे भी है, मानने वालों पे भी है, ना मानने वालों पे भी, ये उसकी रहमत ही है ना कि कुफर करने वाले भी यहाँ पे चल फिर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं, उसकी रहमत ही है कि उसका शरीक ठहराने वाले भी गालियां भी दे रहे हैं उसको, और यानी गाली देना है ना अल्लाह ताला के साथ शिरक करना क्या है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया हदीस कुदसी में क्या है कि अल्लाह को गाली देना, तो वो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह माफ करे, यानी शिरक करके फिर भी वो पनप रहे हैं, तरक्कियां कर रहे हैं, ऐश और आराम लूट रहे हैं, और उसकी रहमत मुसलमान पे भी है कि वो गुनाह करता है अल्लाह को मान के भी उसकी नाफरमानी करता है, अल्लाह का मान के भी उलट चलता है, जबकि अल्लाह उसका रब है, उसका मास्टर है, ये उसका गुलाम है, इंसान गुलाम है, इंसान फ्री नहीं है, फ्री नहीं है कि मैं जो मर्जी करूं, नहीं वो गुलाम है, वो रोज कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसने उसको रब माना हुआ है, मास्टर माना हुआ है, ये माना हुआ है कि मैं आजाद नहीं हूँ, मैं इस रब का गुलाम हूँ, फिर भी उसकी नाफरमानी करता है, और आका देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, और कुदरत भी रखता है कि इसको पकड़ ले, फिर भी वो पकड़ता नहीं है, फिर भी वो छूट देता है, फिर भी वो ढील देता है, फिर भी ये गलत देखता है तो फौरन उसको अंधा नहीं कर देता, गलत सुनता है फिर भी फौरन उसको बहरा नहीं कर देता है, जुबान से कितनी बुरी बुरी बातें बोलता है, अल्लाह के ऊपर भी एतराज करता है, फिर भी अल्लाह ताला उसको गूंगा नहीं कर देता, ये उसका रहम है कि बार बार छोड़ता है, बार बार छोड़ता है, ये उसका रहम है कि उसने इसको फिर भी जिंदा रखा हुआ है, इसके फेफड़े काम कर रहे हैं, दिल काम कर रहा है, मीदा काम कर रहा है, अल्लाह ताला चाहता तो इसका काम तमाम कर देता, उसने तो कुन ही कहना था ना, फिर भी वो मौका देता है इसको, बार बार चांस देता है, इसका मतलब वो चाहता है कि बंदा उसकी तरफ लौट आए, बंदा उसके सामने तौबा कर ले, उसकी रहमत है कि वो हमारे गुनाहों को जानते बूझते पकड़ नहीं करता, और जब इंसान तौबा करता है तो उसको माफ कर देता है, ये उसकी रहमत है, ये उसकी रहमत है कि बड़े से बड़ा गुनाहगार भी उसकी तरफ आ जाए तो वो अपनी रहमत में उसको ढांप लेता है, बड़े से बड़ा गुनाहगार सारी जिंदगी का शिर्क करने वाला भी आखिर उम्र में आके तौबा कर ले तो उसको उसकी अपनी रहमत की चादर में छुपा लेता, तो ये उसका रहम है। तो वो रब अर रहमान और अर रहीम है, जब इंसान इसकी डेप्थ में जाता है ना कि वो कितना रहमान और रहीम है, तो दिल चाहता नहीं है कि वापस जाएं और कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सारी तारीफ तेरे लिए, अल्लाह सारा शुक्र तेरे लिए कि तू ऐसा रहमान और रहीम है, उसका कितना बड़ा रहम है कि उसने हमें इंसान बनाया, कोई सांप बना सकता था, चींटी बना सकता था जिसको लोग रोन देते, किसी कोई कीड़े की शक्ल हमें दे सकता था, कोई छुटकली बना सकता था, कोई मछली बना सकता था, क्या बना सकता था हमें, कुछ भी, उसने अशरफुल मखलूकात बनाया, फिर ये जहन दिया जो काम करने वाला, ये आंखें दी जो देखने वाली, ये कान दिए जो सुनने वाले, ये जुबान दी जो बोलने वाले, सारे आजा की सलामती अता फरमाई, तो वो रहमान और रहीम है तो दिए ना उसने। फिर उसके बाद देखिए उसने मुसलमान बनाया, मुसलमान घर में पैदा किया, ये उसका रहम है, वरना पता नहीं किसी और घर में पैदा हो जाते तो हम ईमान लाते कि नहीं लाते, ये उसका रहम है, उसका रहम है कि मैं सारा दिन उसके हुक्म तोड़ती हूँ, सारा दिन उसके हुक्म तोड़ती हूँ, उसके कलाम से दूर भागती हूँ, उसके कलाम को तवज्जो नहीं देती, उसकी बात को तवज्जो नहीं देती, फिर भी वो मेरे ऊपर तवज्जो किए रखता है, फिर भी वो अपनी तवज्जो मुझसे नहीं हटाता। मैं उसके कलाम से तवज्जो उठा लेती हूँ, उसके जिक्र से तवज्जो उठा लेती हूँ, फिर भी वो मेरी दुआओं को सुनता है, फिर भी वो मेरी दुआओं को कबूल करता है, फिर भी वो मेरी नियमतों को मुझसे छीन नहीं लेता, फिर भी मुझे मौत नहीं दे देता, फिर भी जमीन को मेरे लिए खोल नहीं देता कि वो मुझे निगल जाए, फिर भी आसमान को मेरे पर तोड़ नहीं देता, फिर भी समुद्रों को मेरे पर चढ़ा नहीं देता, फिर भी पत्थरों की बारिश मेरे ऊपर नहीं कर देता, फिर भी अपने अजाब का कोड़ा मेरे पर नहीं बरसा देता, क्योंकि वो अर्रहमान है और अर्रहीम है, क्योंकि उसका रहम उसके गजब के ऊपर भारी है, गालिब है। तो अर्रहीम में ये है कि मुकम्मल तौर से, पूरे तौर से उसकी रहमत, ये है अर्रहीम में, कि उसकी रहमत में कोई कमी ना हो, कोई नक्स ना हो, हमेशा भी हो और पूरी हो, पूरी मुकम्मल हो। सुभान अल्लाह, ये है रहमान और अर्रहीम। मगर कभी इंसान उसके इन नामों को जब जानता है, अब अर्रहमान और रहीम पे हम बात करते रहे ना तो पूरे और कितनी देर गुजर सकती है, लेकिन यहीं तक हम रखते हैं कि इंसान जब अर्रहमान और रहीम को जानने लगता है ना, तो वो इससे, इस अल्लाह ताला की इन सिफात से नाजायज फायदा उठाता है। वो कहता है तो छुट्टी मिल गई, अब तो मैं जो मर्जी करूं, वो तो बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर ही देगा ना। ऐसे ये लोग डराते रहते हैं, देखो अल्लाह ताला ने तो फरमाया मैं रहमान और रहीम हूँ, तो फिर क्यों डराते हैं, फिर क्यों मुझे इस तरह से अजाब की बात बताते हैं, और मैं तो इतने अर्थ से ये गुनाह कर रहा हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा, मुझे तो किसी ने नहीं कुछ कहा, मेरे पर तो कुछ नहीं अजाब आया, अगर अगर मैं गलत कर रही होती तो मेरे पर अजाब ना आ जाता, इट मीन्स इट्स ओके, अगर ओके ना होता तो मुझे अंधा कर देता, ओके ना होता तो फिर मैं ये जो हराम काम कर रही हूँ, जो अल्लाह की नाफरमानी कर रही हूँ, तो अल्लाह मुझे पैरालाइज ना कर देता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब सब ठीक है, सब चलता है, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हमारा ये आज का सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों ने पॉइंट्स लिख लिए होंगे और उन पॉइंट्स के मुताबिक आप अपने नोट्स को मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इन जो भी आपने आज नोट्स लिखे हैं, इनको दोबारा एक दफा पढ़िएगा जरूर इंशाल्लाह ताला घर में। अब हम तिलावत सुनते हैं इन्हीं आयात की, फिर उसके बाद मज़ीद बात करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.